अंग नमो भगवते वासुदेवाय, अंग नमो भगवते वासुदेवाय, अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मूकं करदिवाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातम वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा मध्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं ललिता श्रीविशाखानितं च। नमं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादि पश्चात देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्मादकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्कृतं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीन बन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तब्द कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सौदितौ गौड़दय पुष्पवंतौ चित्र संदतमनुदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। प्रातकालीन भगवत कक्ष में पाबल राम हल में आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूं। आज बहुत ही पावन तिथि है कि संसार विधि समस्त शास्त्र में दौड़ पूर्णिमा व गौर पूर्णिमा व होली उत्सव से ये संबंध है। तो चैतन्य महाप्रभु का 534 साल है। हमारे मुकुंद प्रभु में पूछा था तो उन्होंने बतलाए कि चैतन्य महाप्रभु का 534 साल आविर्भाव महोत्सव है। तो चैतन्य चैतामृत जैसे महान काव्य में और चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल चैतन्य पीयूष चैतन्य लीला ऐसे विभिन्न ग्रंथ में भगवान का बाल्य कुमार पौगंड एवं जौवन लीला का सन्यास लीला का वर्णन है। खास करके मुरारी गुप्त का जो कड़चा है उसका आधार पर और स्वरूप दामोदर ने भी कुछ लिपिबद्ध किए हैं। जैसे आप भागवत गीता प्रमाण करता है कि परित्राणाय दुष्कृणा परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी उसी उद्देश्य को साधन करने के लिए सची माता एवं चैतन्य जगन्नाथ मिश्र का आश्रय करके उन्होंने शुभ गौर पूर्णिमा व आज का दिन में व आज का तिथि में उन्होंने प्रकट हुए हैं। एक प्रसंग में आता है कि चैतन्य महाप्रभु अन्य का कोई कारण है, प्रभुपाद ने मुख्य कारण एवं गौण कारण चैतन्य चरितामृत वर्णन किए हैं। तो उसमें मुख्य कारण की अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान सिखाए शरणागति भकते प्राण, जो कि कभी इसको एक प्रेम को दान किया नहीं गया था। चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक आता है कि अनर्पित चरिंचिरात अवर्ण अवतीर्ण कौ समर्पित उन्नत रज स्वक्ति श्रियम हरि पुरंट सुंदर दूति कदम्ब सिद्धिपित सदा हृदय स्कंदरे स्मृतव सचिनंदन। जो कि कभी वितरण नहीं हुआ था, भाई प्रेम को कभी कोई दिए नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु का ये मुख्य कारण है। शास्त्र में वर्णन है कि सची माता एवं जगन्नाथ मिश्र का एक एक करके 8 कन्याएं हुए थे एवं सप्तम गर्भ में जैसे देवकी का बलराम आए थे ऐसे विश्वरूप आए। और चैतन्य महाप्रभु आज जैसे पवित्र तिथि में उनका प्रकट हुए और किसके लिए ना, ये चंद्र ग्रहण का समय दिन था, लेकिन दिन में तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, रात को होती है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव समय था गुधरी लग्न में, तो चंद्र ग्रहण छल से सभी लोग गंगा में स्नान किया करते थे। जैसे आप कृष्ण लीला में भी आप सुने हैं कि कुरुक्षेत्र में यहाँ से ब्रज गोपियां गए थे और चैतन्य महाप्रभु का ये तिथि जैसे है ऐसे ही, और कुरुक्षेत्र से भी और कुरुक्षेत्र में गोपियां यहाँ से गए थे और द्वारका से भगवान भी आए थे, वहां बहुत बड़ा महामिलन हुआ था। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म समय में यह चंद्र ग्रहण व राहु उनको ग्रास कर लिया था, इस शास्त्र में वर्णन है। लेकिन उसमें चंद्र में तो कलंक है, लेकिन चैतन्य चैतन्य तो वर्णन है कि यह निष्कलंक चंद्र उदय हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दूसरा नाम क्या है, गौर चंद्र। तो जो भी हो, तो भगवान प्रकट का समय में सभी जो ग्रह स्थितियां शुभ समय व शुभ स्थिति में विराजमान थे एवं चंद्र ग्रहण क्षण में सभी लोग क्या करते थे ना, गंगा में स्नान किया करते थे। शास्त्र में इसे वर्णन है कि ग्रहण का समय जो भी किया जाता है कुटी गुण फल मिलता है, ये तो गौण कारण है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का मुख्य कारण क्या ना, ये जो भगवत प्रेम को जो वितरण नहीं हुआ था उसको बांटने आए थे। एवं चैतन्य महाप्रभु जो सची माता का गर्भ से प्रकट हुआ, उन्होंने स्वाभाविक की बच्चे लोग का काम क्या है, भूमिष्ठ होते रोना चालू करते। तो चैतन्य महाप्रभु भूमिष्ठ होते ही कान रोना चालू किए, लेकिन अभी रुकते नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सबको हरिनाम कराना चाहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम का भी उनको प्रचार करना था। तो जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का खबर सब जगह में फैल गया तो जितना भी उनका पार्षद लोग थे, खास करके सीता देवी, बहुत सारे मांगल के द्रव्य लेके आए और उनको प्रदान भी किया गया। तो आनंद का सीमा नहीं था उस समय, और हरिनाम का भी तुम्हुल संग्राम चल रहा था उस समय। तो भगवान इसे बाल्य लीला क्षण में सभी को हरिनाम कराया। और जब उनका पौगंड लीला आया उसी समय फिर उनका जो विद्या धन का भी चालू हुआ, तो विद्या छल में भी उन्होंने और ये भी सिखाए जगत को कि विद्या धन कैसे किया जाता। उनका जो गुरुदेव थे गंगादास पंडित, अब जिन लोग परिक्रमा में गए हैं गंगानगर भी एक जगह आता है। तो चैतन्य महाप्रभु विद्याध्यन का बाद उनका जो कौमार वयस आया तो उन्होंने फिर तर्क शास्त्र का भी अध्ययन किए थे। उन्होंने तर्क शास्त्र अध्ययन एवं कई दिग्विजयों को भी पछाड़ दिए, खास करके केशव कश्मीरी, बहुत प्रकांड विद्वान थे उन्होंने उसमें, और जयपत का लेके उन्होंने घूम रहे थे। जो मायापुर आए और मायापुर में जितना भी विद्वान व्यक्ति थे, क्योंकि नवद्वीप में उसी समय ऐसे अवस्था था कि भक्ति कहीं नहीं किया करते थे, खास करके वहां विभिन्न शास्त्र में मतलब षड़ शास्त्र में पारदर्शी थे एवं ज्ञान का युग का व्याख्या किया करते थे। और मदिरापान विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार वहां पर किया करते थे। तो उसी समय देखे कि अतीत आचार्य ये संसार अभी कहां जाने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने तुलसी मंजरी एवं गंगा पानी से आराधना किए थे और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। जो भी हो तो चैतन्य महाप्रभु ये विद्या अध्ययन का समय में भी बहुत सारे विद्वान को उन्होंने पछाड़ दिए थे। एवं भगवान जब यौवन अवस्था को उन्हें प्राप्त किए, वो आप लोगों को ज्ञात है कि चैतन्य महाप्रभु दो शादियां किए थे, विष्णु प्रिया एवं लक्ष्मी प्रिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो बांग्लादेश गए थे उस वहां से को जो दान दक्षिणा में लेके आए थे, ये रीति रिवाज उन्होंने सिखा थे, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म ग्रहण किए थे। जैसे भगवद गीता में भी बताया गया कि जद आचरति श्रेष्ठ तत्तर जन, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो को जिस किसको आचरण दिखाते हैं और निकृष्ट व्यक्ति उसको आचरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बाद में उन्होंने फिर ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की एवं ईश्वरपुरी से जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण किए उसे उनका प्रेम प्राप्त हुआ। तो उन्होंने वृंदावन जाने के लिए कृष्ण प्रेम में मत्त होकर आए। क्यों गया गए थे ना, हमारे समाज में ये भी रीति रिवाज है कि हमारे वंशज को पिंड दान दिया का रीति रिवाज है। तो इसी क्षण में वहां गए एवं दीक्षा लेके आ गए, क्योंकि नवद्वीप में जो विद्वान लोग थे उन्होंने समालोचना करते कि अरे जगन्नाथ मिश्र बहुत दिन पहले गुजार गए और निमय पंडित और उनका पिंडदान भी दिया नहीं, क्योंकि निमय इसलिए उनका नाम हुआ था कि जो आठ कन्याएं गुजार गए थे तो परिवार माता पिता बहुत व्यस्त थे, इसीलिए नीम का वृक्ष नीचे जन्म होते इसलिए भी निमाई नाम है। और जमराजा उसको ना पकड़े पर ना ले जाए इसीलिए जो माताएं थे वृद्धा माताएं उनको निमाई भी नाम दिए थे। क्योंकि नीम जो होता है कोड़ा होता है, किसको अच्छा लगता है कोड़ा चीज, लेकिन शरीर के बाद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो भी हो, तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां से आ रहे थे तो नित्यानंद प्रभु देखे कि आप ही चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए रवाना हो जाएंगे, तो कुछ ग्वाला लोग को सिखा दिए कि जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गौरहरी यहां आएंगे तो उनको बता देना कि ये रास्ता वृंदावन के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी ब्रजभाव में है। तो वहां चैतन्य महाप्रभु जब आए जो पूछ दिए तो बता दिए कि हाँ ये वृंदावन का रास्ता है। तो चैतन्य महाप्रभु सीधे और वृंदावन के लिए रवाना हो गए, लेकिन वहां पर नित्यानंद प्रभु ने कुछ राजनीति चाल खेल दिए। क्या किए ना, अद्वैताचार्य को उन्होंने बतला दिए कि अभी चैतन्य महाप्रभु आ रहे, आप आपका नौका लेके रेडी रहिए। वो कहां लेके जाना था ना, शांतिपुर। तो अद्वैताचार्य ने डुरको और कोपिन बा बहिर्वास वगैरह सब लेके आए थे, और उनका जो संन्यास क्या हुआ था, किससे, केशव भारती से। तो उन्होंने 26 साल तक उन्हें गृहस्थ आश्रम में रहे और संन्यास ले लिए, और 6 साल का उन्होंने फिर गमनागमन व यात्रा किए, और 18 साल तक उन्होंने पुरी में भी रहे। विभिन्न प्रकार का जो शास्त्र का जो गूढ़ रहस्य को उन्होंने आस्वादन किए, अपना अंतरंग भक्त का था, और बाहर उन्होंने प्रचार का बहाना बनाकर हरिनाम संकीर्तन किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब दक्षिण भारत जब यात्रा किए थे तो वहां पर रामानंद राय का साथ भी मुलाकात हुआ था, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में पहुंचे तो वो सबको छोड़ के चल दिए थे, अकेले ही गए वहां, एवं जगन्नाथ को दर्शन करके मूर्छित हो गए, और पंडित लोग उन लोगों को मारने के लिए भी आ गए थे। लेकिन उसी समय प्रकांड मायावादी विद्वान थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उन्होंने सबको सावधान कर दिए, क्योंकि ये साधारण मनुष्य नहीं है। एवं चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना आश्रम बा निवास को ले गए, और वहां पर उनको सुस्त कराने का बाद फिर और नित्यानंद प्रभु और उनका जो पार्षद लोग भी आ गए वहां पर, एवं वहां पर ये नवीन सन्यासी थे इसीलिए उनको वेदांत पढ़ाने के लिए प्रयास किया। लेकिन बहुत लंबे समय तक वेदांत अध्ययन करने का बाद भी चैतन्य वहां पर उनको कुछ बोले नहीं, कोई प्रश्न भी नहीं किए, क्या कोई टीका टिप्पणी नहीं किए। तो उन्होंने जो बतलाया कि अच्छा आप इतना दिन से वेदांत श्रवण कर रहा है कि आप कुछ बोले ही नहीं रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप जो शास्त्र का जो व्याख्या कर रहा है उसका सूत्र तो मैं समझ जा रहा हूं, लेकिन आपका जो मन से जो व्याख्या कर रहा है आप उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बात है, तो उन्होंने बोले आप कहां गलती है बता दिए, वो गंगा का महिमा उन्होंने व्याख्यान किए थे, तो आप चैतन्य चरिता में तो अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको अवश्य जानकारी हो जाएगा। तो उन्होंने वो सोच रहे थे कि साधारण एक इंसान है, लेकिन उनका जो गलती पकड़ लिया तो वो उसको पता चल गया कि ये साधारण कहीं इंसान नहीं है, एवं चैतन्य महाप्रभु उनको सड़वरुज भी दर्शन कराए। उसी समय उन्होंने और सार्वभौम शतकम बल के लिखे हैं, जो कि हम प्रणाम में प्रथम प्रणाम मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं, नमः महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिश्य नम, चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु अंतरंग भाव में, अरे बहुत विस्तार में, बहुत और गुड़ा रस लीला को भी उन्होंने आस्वादन किए। तो जो वृंदावन चैतन्य महाप्रभु आए थे, कौन से जगह से होके, ना झारखंड से होके, चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने बोले कि मैं साथ में किसको लेके नहीं जाऊंगा, मैं अकेले ही चलूंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु विनती किए कि कम से कम आपका लोटा कमल के लिए और एक भक्त को साथ में तो ले जाइए। तो एक भक्त को उन्होंने लेके आए थे। तब झारखंड पथ में आए, अभी भी जो झारखंड पथ है आप दिन में भी जाने के लिए डर जाएंगे। तो मनोहरपुर से हम जो वो केन्द्र डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा जाते हैं उसमें कम से कम 3-4 घंटा का समय लगता है। उसमें शाम को गाड़ी छोड़ देते हैं, शाम को छोड़ते नहीं सुबह छोड़ देते हैं गाड़ी। तो अभी भी वो निघंच जंगल है। और चैतन्य महाप्रभु जब आए महामंत्र कीर्तन करते हुए बाघ भालू हिरण बागरा को भी उन्होंने हरिनाम कराया, क्योंकि हमारा जो असुर स्वभाव है ये पशु का जैसे ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम का प्रेम उनको भी वितरण किया। एवं जब वृंदावन आए तो वृंदावन ने उन्होंने 12 वन का भी दर्शन किया। अब परवर्ती समय में हमारे श्रीनिवास आचार्य और जीव गोस्वामी, गंगा माता गोस्वामी, ये सभी 12 वन का दर्शन किए। और उसी परंपरा से हम लोग भी अभी उसका दर्शन करते हैं। तो जब राधा कुंड में उन्होंने आए तो वहां पर राधा कुंड का अभी हम जैसे सुंदर सरोवर दर्शन करते हैं, उसी समय ऐसे सरोवर नहीं था। उसमें 2 खेत था, काली और गोरी नाम का खेत। तो कोई उन्होंने जब वहां पर स्नान किए, स्नान करने का बाद उन्हें कुछ ब्रजवासी लोग को भी पूछे थे श्यामकुंड राधाकुंड कहाँ है, तो कोई बतला नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हईल छई बलराम हईल नीताय। से चैतन्य महाप्रभु सब विदित था, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु फेरे काली और गोरी खेत से उन्होंने मिट्टी लेके तिलक किए। इसलिए अभी भी हमारा परंपरा है कि वहां से तिलक लेके मट्टी लेके तिलक करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में ये दर्शन का क्या करते थे, इसी समय हिरण बागरा भी उनका रूप और हरिनाम से मुग्ध हो जाते थे एवं आया करते थे उनके पास में। अब चैतन्य सत्य में उसका हमारे परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने वर्णन किए उसका। तो चैतन्य महाप्रभु इसे कई दिव्य लीलाएं उन्होंने प्रकट किए एवं एक तीर्थ है कि तीर्थ यात्रा करने वाले एक ब्राह्मण भी आए थे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कई अतिथि आते हैं तो उनको बहुत सुंदर ढंग से आगवानी करना पड़ता है। तो उसको जगन्नाथ मिश्र भी और पालन किए थे, उनको पहले रहने के लिए भी व्यवस्था कर दी। लेकिन जो तीर्थ ब्राह्मण थे उन्होंने कभी पकवा चीज नहीं खाया करते थे, फल मूल खा के ही आहार करते थे। लेकिन आज जगन्नाथ मिश्र में घर में जो पधारे वो कुछ व्यवस्था कर दिया गया, चावल सब्जी चपाती और भी कुछ व्यवस्था कर दिया गया। तो उन्होंने बनाने का बाद जो वो भोग लगा क्या करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, आके खा देते। क्योंकि जिसका नाम से हम निवेदन करते हैं वो आएगा नहीं तो दूसरा कौन आ सकता है। क्यों आप ब्रज का लीला में भी आप सुने होंगे कि जब गोपियां माखन मिश्री मटका में भर के छीका में झुला देते थे, ये पहले पहले नीचे रखा करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण आके उसको खुद आस्वादन करते थे और मित्र लोग को भी आस्वादन किया कर दिला करते थे। तो उन्होंने क्या किया, छीका को ऊपर बांध दी। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे ना, वहां से भी चुरा लेते थे, क्योंकि उनका ये भाव रहता कि भगवान कृष्ण आके उसको ग्रहण करे, नहीं कि वहां पर कोई गुरु मंत्र पद्म माचमने कोई जरूर नहीं रहता था, क्यों स्वयं भगवान है तो उनको सीधे सीधे भोग लाने का आदत है और चोर करके भी। तो चैतन्य महाप्रभु तो बार बार उन्होंने निवेदन क्या करते थे और चैतन्य महाप्रभु खाया करते थे, क्योंकि ये तीर्थ के ब्राह्मण जो कोई इस साधारण ब्राह्मण नहीं थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देना भी चाहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी बहुत नटखट थे। तो उन्होंने किया दोबारा जब भोजन कर लिए तो उनको दूसरा घर में भी दरवाजा बंद कर दिए थे। तीसरा बार जब और भोग उन्होंने अर्पण किए तो आके फिर खाना चालू किए, उन्हें बोलते हा हा क्या हो गया हमारे, आज वहीं मेरे को उपवास ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो अभिन्न विश्व रूप है उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किए थे, ठीक है जो भी गलती हो गया अभी हम सावधान हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु तीसरा बार भी उनका दिया हुआ जब भोजन ग्रहण कर लिए एवं उनको भी दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद उनको फिर बतलाने कि ये जो गुप्त रहस्य को आप प्रचार करो। और उन्होंने उसी दिन से ये तीर्थ के ब्राह्मण क्या किए ना, ये नवदीप धाम में ही रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे बहुत से बाल्य लीला क्षण में लीला किए, ऐसे कि कभी कभी सर्प बगरा जब आ जाते थे तो बाल्य लीला क्षण में उन्हें क्या करते थे ना, उसका ऊपर बैठ जाते थे, क्योंकि खीर समुद्र में जब भगवान लेटते हैं सर्प के ऊपर अनंत नाग के ऊपर विराजमान रहते, तो यहां पर जो भी माताएं थे उन लोगों पर डर जाते थे क्या हर है। तो चैतन्य महाप्रभु निर्भय होकर ये सर्प का पर बैठ जाते थे। वो चैतन्य महाप्रभु यहां से फिर पुरी धाम में आए, पुरी में काशी मिश्र का घर में रहा करते थे, एवं जब रथ यात्रा का समय आया उस समय रथ यात्रा का पहले गुंडीचा मार्जन होता है, तो गुंडीचा मार्जन चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ से श्री मंदिर को मार्जना किए गुंडीचा मंदिर को, क्योंकि हम लोग स्वयं मंगल आरती में गुरुवाष्टकम पाठ करते हैं, शिव विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना युक्ता से भक्ता से निहंज चूपी बंदे गुरु सी चरणार बिंद। तो चैतन्य महाप्रभु ये गुंडीचा मार्जन का बाद में फिर रथ यात्रा चालू हुआ, तो रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु उदंड कीर्तन के अर्थ करते थे, कोई भाग में बांट दिए थे कीर्तनिया और मृदंग बजाने गाने वाले भी, तो हर ग्रुप में बा दल में चैतन्य महाप्रभु अपना विस्तार रूप में विस्तार करके हर दल में उन्होंने कीर्तन में भाग लिया करते थे। जब रथ यात्रा में रथ रुक जाता था वहां पर राजा जो प्रताप रुद्र ने हाथी लेके फिर उसको धक्के मारे, लेकिन रथ टर्स से मच नहीं हुआ, बहुत सारे और पहलवान लोग को भी लगाए, रथ ना आगे होता था ना पीछे होता था। फिर चैतन्य महाप्रभु जाके जब सिर लगा देते थे तो वो गड़गड़ शब्द करके रथ आगे निकल जाता था, लेकिन इसे बीच में एक उद्यान है जिसका नाम है बल्लभ उद्यान, क्योंकि ये प्रताप रुद्र राजा उनसे मिलने के लिए बहुत इच्छा प्रकट किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये लोग को शिक्षा देने के लिए उनको वो मना कर देते थे अपराध पार्षद लोग, क्यों राजा तो परम भक्त है लेकिन उनका जो दू अक्षर जो है राजा वल के है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि चाणक्य नीति में ये भी यही हमको सतर्कवाणी मिलता है कि राजाओं को नदी ये नारी वे सिंह बा दांत जिन लोग का नाखून है दांत बड़े बड़े हैं उन लोग को और भरसा नहीं करने के लिए। तो ये भी शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपना पार्षद को मना कर देते थे, लेकिन प्रताप रुद्र ने बतलाए यदि उन्होंने मेरा को और दर्शन नहीं देवा मिलन का सुजोग नहीं देंगे तो मैं क्या कर भिखारी बन जाऊंगा, कान में गए कुंडल लगा के मैं भिखारी बन जाऊंगा। तो ये खबर भी पार्षद लोग के लेके चैतन्य महाप्रभु का पास दिया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए ना अपना बहिर्वास से दे दिए उनको संतना देने के लिए। उनका जो पुत्र थे वो भी सावना रंग का थे, प्रताप का जो पुत्र थे, जब उनको चैतन्य महाप्रभु बहिर्वास दे दिए थे तो उन्होंने आनंद मग्न होकर प्रताप रुद्र राजा ने उनको आलिंगन किया करते थे, क्योंकि प्रताप रुद्र राजा कोई साधारण राजा नहीं थे, जगन्नाथ जी का सेवक है। लेकिन प्रताप और राजराज जीत पकड़े कि उनसे कैसे ही मिलना है। तो रथ यात्रा का समय, जब रथ यात्रा बड़गंडी होकर और वो बल्लभ उद्यान का पास आता था, क्योंकि उसी समय बीच में एक नदी भी हुआ करता था, उसमें इधर एक तीन रथ हुआ करता था, उधर तीन रथ हुआ करता था जो श्रद्धा वाली है। तो यहां से तीन रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यहां पहुंच जाते थे, तो वहां फिर सभी लोग को उनको कांधे में ढोके दूसरा तरफ ले क्या करते थे, और तीन रथ वहां से फिर उन्चा मंदिर में जाया करता था। तो बीच में जो बल्लभ उद्यान है वहां पर कीर्तन में जब थक जाते थे वहां पर लगभग कीर्तन या विश्राम किया करते थे। तो उसी समय क्या ना रामानंद राय ने राजा को बोले कि तुम राज वेश में चैतन्य महाप्रभु आपको दर्शन नहीं देंगे, आप कम से कम अरे साधारण पोशाक आप पहन लीजिए। तो अभी भी वो परंपरा है, तो अपना राज पोशाकों ने परिवर्तन करके उन्होंने पर आए कि जहां पर विश्राम कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उनका पाद संवाहन करने लगे। तो पाद संवाहन करने के समय क्या किए ना दशम स्कंद का जो हम लोग वृंदावन में अभी परंपरा बन गया है गोपी गीत का गायन करते हैं, तब कथामृतम तब तजीवरम कवि विरीडितम कर्म साप श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भ्रुवि गिणंदिजे भूरिदाजना। जब प्रताप रुद्र ने उसका गायन चालू किए चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में भावित होकर न पर बोले कि आर और गाइए और गाइए और गाइए। तो चैतन्य महाप्रभु इसे ही दिव्य लीला विलास करके उन्होंने गोपी गीत का आस्वादन किया करते थे। तो जिन लोग आप पूरी गए हैं सिद्ध बकुर भी देखे हैं दर्शन किए होंगे, और जिन लोग नहीं गए हैं वह दर्शन नहीं किए जरूर करना चाहिए। वहां पर चैतन्य महाप्रभु का एक श्रेष्ठ भक्त रहा करते थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। खाली हरिदास ठाकुर नहीं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जन्म लिए थे उन्होंने पाड़े पूछे थे जवानों का परिवार में, इसीलिए उनका नाम हरिदास ठाकुर नामाचार्य ठाकुर नहीं। उनको जो बहुत सारे उन्होंने दिव्य लीला साधन कराए तो उन्होंने श्री मंदिर में प्रवेश नहीं किया नहीं करते थे, क्योंकि ना अभी भी रीति रिवाज है कि जिन लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो अभी तक गुंडागिरी हिसाब से और विदेशी भक्तों को, अरे विदेशी भक्तों लोग को नहीं विदेशी को भी नहीं देते, ऐसे कि हमारे इंडियन लोग को भी भारतीय लोग को भी उनको जो जिसको संदेह होता है उसको नहीं छोड़ते। उसमें निराद्री महोदय में वर्णन है कि जिन लोगों और वर्णाश्रम धर्म को पालन नहीं करते हैं वो यदि प्रवेश करेंगे राजा का आयु हानि होगा, लेकिन उसी रीति रिवाज अभी भी प्रवेश निषेध है। जो भी होता हो, हरिद्वार ठाकुर मंदिर में प्रवेश किया नहीं करते थे, और उनको भजन स्थान कहां पर है ना, ये भी सीधे बकुल में दिया जाता था, और वहां ही भगवान नाम किया करते थे। कितना नाम करते थे? 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3-3 लाख नाम जब क्या करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको हर दिन दर्शन दिया करते थे। तो भक्त का अंदर कितना क्षमता रहता है, अहम भक्त पराधीन। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के जो प्रसाद दानतुन लेके गए वहां, और हम पर गाड दिए, अभी जो वो सिद्ध बकुल नाम से प्रसिद्ध है। और जब रथ यात्रा का समय आया, आपको लोग सुने हैं कि हर साल अक्षय तृतीया से ये रथ यात्रा बसंत पंचमी से भी चालू हो जाता है। कोई कोई शास्त्र वर्णन है रथ का सारा लकड़ी जो नया होता है, तो कुछ लकड़ी काम कम हो गया तो सभी लोग बतलाए कि हरिदास ठाकुर जहां पर भजन कर रहा है वहां पर वो बकुल पेड़ है, उस लेके आ रहा है। लेकिन राज कर्मचारी जब गए, बाबा देखे कि अभी रुका भी नहीं जा सकता, रुकेंगे भी तो उन्होंने छोड़ेंगे नहीं। लेकिन रात में जो बकुल का जो पेड़ है उसका खोखला हो गया, सुबह आके देखे कि उसमें जो मंजापन है वो नहीं है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ये भी दिखा दिए कि ये महात्मा का साधु का भजन का क्या प्रभाव होता है। तब तो जो उनका अंतिम समय आ गया था हरिदास ठाकुर का, तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन महाप्रसाद भी लेके आए, तो उनको जो प्रदान किए उन्होंने बोले कि नहीं मेरा तो नाम माफी पूरा नहीं हो रहा, हम अब पूरा ना हो 9 बज गया था हाजिर हो जाते, कभी बुरे अच्छा भी सुना देते हैं, लेकिन आज आप लोग 9 बजे प्रसाद नहीं मिलेगा। मिलेगा आज? मिलेगा नहीं। जो भी हो, तो उन्होंने बोले कि क्योंकि हमारे 16 महीना पूरा हो और ना हो, पहले महाप्रसाद गोविंद। तो हरिदास ठाकुर बोले कि ना मेरा नाम पूरा नहीं हो रहा है, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले अरे तुम तो सिद्ध हो बन गया है और भजन का अंतिम सिद्ध आ गया है, अब इतना निष्ठा क्यों इतना जिद कर रहा है, क्यों उनका निष्ठा कैसे था? तो उनको भय चैतन्य महाप्रभु बोले तुम्हारे क्या इच्छा है मांग लीजिए। तो उन्होंने बोले मेरा यही इच्छा है कि आप महाराज सामने रहिए और मैं आपका चंद्र वर्णन देखते देखते प्राण पुकार को मैं छोड़ सकता हूं। और भगवान उसको भी इच्छा पूरी की, तो उनका प्राण पुकार उड़ गया। तो चैतन्य महाप्रभु गोद में ही थे, क्योंकि उसमें महाकीर्तन हो रहा था, और चैतन्य महाप्रभु अपना गोद में लेके बहुत उदंड कीर्तन भी किए, एवं अपना हाथ में उनको वो समाधि भी दिए जो कि अभी हरिदास ठाकुर समाधि नाम से नामित है। और वो इतना ही नहीं, ये समुद्र जो लवण समुद्र है उसको महातीर्थ बना दिए हरिदास ठाकुर का माध्यम से। अभी जो भी भक्त लोग जाते हैं तो वहां पर जो क्षेत्र परिक्रमा थे 3 दिन का, तो उसमें हर दिन ये नियम है कि समुद्र में नहाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इतना ही नहीं, समाधि देने का बाद सब वहां से महातीर्थ में आह्वान करने का बाद फिर प्रसाद सेवा का व्यवस्था होना चाहिए। आज चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी थे, ना कोई घर गृहस्थी तो था नहीं, वो तो सब छोड़ के चल दिए थे। तो उन्होंने फिर आनंद बाजार के लिए रहना हो गए अपना बहरीवास से, और मांगे सब प्रसाद जगन्नाथ का। तो हर जो स्वर लोग वो प्रसाद दिए, अरे थोड़े थोड़े नहीं, अभी भी आप जो जब जाते हैं कि चखने के लिए देते हैं, कभी बुरा अच्छा भी सुना देते हैं। अब जब नहीं लेते हैं ना तो बढ़िया से संस्कृत श्लोक से आपको सुना देंगे। लेकिन हमारे चैतन्य भागवत तो सतर्क कर देता है कि हम उनको उसी नजर से ना देखें, क्योंकि जो 5 जुजनपुरी का जो है उसमें जितना भी भक्त निवास करते हैं उनका सर्प मुक्ति है, सर्प मुक्ति। क्योंकि ये भी वर्णन है कि वहां पर जो मछली ग्रहण करते हैं ये हविषा अन्न का फल का आरोह पुण्य मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु पुरी में अवस्थान काल में जयदेव एवं गीत गोविंद का, जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद और रामानंद राय का जो नाटक या श्रवण किया करते थे, जब महाभाव में उन्होंने कभी कभी और अपना नाक रगड़ देते थे दीवार में, उन्माद प्रलाप किया करते थे। और इतना ही नहीं, कभी कभी बाहर चले जाते थे। तो एक लीला में है कि उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दिए, क्यों ना उनको समुद्र का जो नीला रंग देख के जमुना भान हो गया। जमुना में और जलकेली का बहाना थे, उन्हें जब वो वहां और पहुंच गए तो जाके कहा कोणार्क, कोणार्क तक चल दिए, जो चंद्रभागा नदी का और बीच में एक मछुआरा ने उनको बहर और वो जाल से और वो पकड़ लिया। वो तो आनंद सीमा रहा नहीं, क्योंकि कम से कम 50 किलो से ज्यादा होंगे चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उनका अंदर समाया हुआ है। बहुत खुश तो थे, लेकिन जो बाहर निकले देखे एक बेढ़गा चीज मिला, वो तो डर गए। लेकिन चैतन्य मार्ग स्पर्श से उनको भी फिर आरोक्शन हो गया। जैसे अभी कोरोना वायरस आ रहा है ना, सब लोग डर रहा है कि नहीं, डर रहा है कि नहीं, सब लोग कोई मुख में लगाने भी चाहिए। तो उनको छूते हुए फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनका शरीर वहां सत्र में ऐसे वर्णन है कि कछुआ का जैसे हुआ हो जाता था, जो हड्डी सब को ढीला पड़ जाता था। तो भक्त लोग ढूंढते ढूंढते जो और वहां पर आर पहुंचे, देखे कि ये इनका उद्धंड नृत्य दर्शन किए। जो पूछ रहा है तो उन्होंने कुछ नहीं बोल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ये पुरी में रहते हुए विभिन्न प्रकार लीला भी किया करते थे। और भी प्रसिद्ध लीला है कि वहां पर जो अलारनाथ है, वहां तो लगभग 12-12.5 किलोमीटर दूर है। तो चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ रथ यात्रा का बाद सान यात्रा का बाद जो भगवान का दर्शन नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने क्या करते थे ना, अलारनाथ चले जाते थे। वहां विष्णु का प्रतिमा है, वो ब्रह्मगिरी का नाम से भी है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु भाव बेहोल होकर हरिकृष्ण महामंत्र किया करते थे। एवं आप वहां देखे होंगे बहुत बड़ा चट्टान है, तो चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श से ये घुटनों एवं ये जो कोई नहीं है सारा सर्वांग शरीर का वहां छाप लगा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम में अवस्थान करते हुए बहुत सारे दिव्य लीला का प्रदर्शन किए। और वहां पर एक बालू का एक ढेर भी है, वो चट्टक पर्वत कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर जब जाते थे उनको जब दर्शन किया करते थे, उनको क्या दर्शन होता था, गिराज गोवर्धन, गिराज महाराज की। तो आप पास में आपका टोटा गोपीनाथ है, वहां पर गदाधर पंडित रहा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर रेत से और गोपीनाथ व टूटा गोपीनाथ को आर प्रकट किए थे वहां से, और रघुनाथ गदाधर पंडित को दिए थे। ऐसे मान्यता है कि जब गदाधर पंडित ने प्रदावस्था को प्राप्त किए, भगवान को अच्छा से श्रृंगार नहीं कर पाते थे, तो भगवान भी आप देखेंगे बैठे हुए। जैसे आप जाते हैं कि बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में भगवान खड़े नहीं है, वहां क्या बैठे हुए हैं कि नहीं, तपस्या समुद्र में। तो चैतन्य महाप्रभु जो पुरी जा रहे थे, उसे भार्गवी नदी में जो पहुंचे थे, नित्यानंद प्रभु भी पीछे पड़ गए वहां, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस समय और अपना दंड लेके चलते थे, क्योंकि अभी भी रीति रिवाज है कि 10 साल तक असन्यास दंड को साथ में रखना चाहिए। काय मन वाक्य में हमको सतर्क कर देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को पकड़ा दिया किसका दंड, चैतन्य महाप्रभु ने। तो नित्यानंद प्रभु सोचे कि अरे ये फिर चैतन्य महाप्रभु कोई जरूरत तो थोड़ी है, तो उन्होंने क्या किए ना, हाँ तोड़ के 3 टुकड़ा करे महादेव। चैतन्य महाप्रभु जो बोले अरे हमारा दंड कहाँ है, अरे दंड कहाँ है, दंड हरिबल हो गया। अरे जो हमारा एकमात्र सारा था उसको भी हरिबल कर दी। तो चैतन्य महाप्रभु इसे कई दिव्य लीला का आर प्रकट करते हैं उन्होंने और आस्वादन किए। और चैतन्य महाप्रभु सन्यास लीला में छोटा हरिदास को एक दंड देने का बहाना से भी बहुत बड़े और लीला प्रदर्शन किए, क्योंकि चैतन्य चैतन्य में ये वर्णन है कि यदि ही प्रणय रखते चाहो गौरांग रसने छोटो हरिदास कथा था जन्म, ये सन्यासी के लिए उनने सतर्क करा दिया। छोटो हरिदास ठाकुर ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि वो सन्यासी थे, भगवान दास उनका खान पान का व्यवस्था किया करते थे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस कन्म में हमारे मायापुर उड़ीसा में उबाला हुआ चाल जो डबल बैल वाला खाते हैं, मोटा मोटा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत सुंदर साली अन्न का, साली धान का जो अन्न है उनको लाना था, तो उन्हें भेज दिया किसको ना, छोटा हरिदास को। जो चैतन्य महाप्रभु का 3.5 जन भक्त है उसे माधवी दसी को आधा गिना जाता है, तो उनसे और चावल लेके आए। वो वृद्धा तपस्विनी थे एवं जब उनको बहुत सुंदर ढंग से पकवान बन गया तो भगवान को निवेदन करने का बाद उन्हें भगवान को जब आ रहा परोसे तो चैतन्य महाप्रभु अन्न को बहुत प्रशंसा की, वाह वाह क्या सुंदर सुगंध है, कितना सुंदर और चावल है, क्योंकि वो हमारे हिंदी में चावल बोलता है लेकिन उड़िया बांग्ला में जो भात बनने के पहले चावल होता है। जो भी हो तो चैतन्य महाप्रभु महाप्रसाद को प्रशंसा किए और प्रशंसा भी करना चाहिए, क्योंकि महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव, ये 4 बराबर है। तो प्रशंसा करने के बाद प्रसाद भी हो, सेवा हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये चावल कहाँ से आया था, कौन से फैक्ट्री से। तो उन्होंने बोले नहीं हरिदास, छोटा हरिदास माधवी देवी साहब से लाए। तो चैतन्य महाप्रभु भी ठीक है, उनसे मिलने, मेरे से मिलने के लिए मना कर दिया। तो हरिदास ठाकुर का दुख का सीमा रहा नहीं, उन्हें 3 दिन 3 दिन खड़ा खड़ा उपवास कर दिए, और आज आप लोगों को भी उपवास करना पड़ेगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु से विनती किए पार्षद लोग, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर हृदय वाले नहीं थे लेकिन आज कठोर हो गए, क्योंकि एक शिक्षा देना था सन्यासी को, कई माता से बिना मतलब से नहीं मिलना है, लेकिन ये तो भगवान का सेवा के लिए गए थे फिर एक शिक्षा दे दी। क्योंकि लकड़ी का नारी हो भी मुनि के लिए मन हर लेने का संभावना रहता है, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वानम अभी कर सती। जो भी हो तो बहुत दुखी हो गए हरिदास, उन्होंने फिर अपना प्राण त्याग करने के लिए विचार किए। तो रात रात उन्होंने फिर चल दिए इलाहाबाद में त्रिमणि संगम में शरीर छोड़ दी, और परवर्ती शरीर उनको गंधर्व का शरीर मिला, और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने हर दिन आर संगीत सुना करते थे। तो वहां से भी एक भक्त यहाँ आए थे पूरी, और चैतन्य महाप्रभु अंदर जामी है फिर भी बोले कि छोटा हरिदास कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि पता नहीं अभी एक भक्त ने बोला कि सुबह सुबह तो चल दी, लेकिन वहां से आके जो भक्त संदेश दे दिया कि छोटा हरिदास त्रिवेणी संगम में राम नाम सत्य कर चुका है, क्योंकि जो आत्महत्या करते हैं ब्रह्म राक्षस होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा देखिए, उनको दंड का क्षण में दिव्य शरीर उनको मिला, और भगवान वो हर दिन उन्हें संगीत सुना करते थे और पूरी में उनको दर्शन भी करा दे चैतन्य महाप्रभु। तो उनका सबका संदेह था वो भी मुच्छन हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ये दंड का छल से को बहुत सारे हमको शिक्षा देते हैं। और एक परम भक्त है जो कि कला बचा श्रीधर, कला बचा श्रीधर की। तो कला बचा श्रीधर का भजन कुटीर देखे होंगे जगन्नाथ मंदिर जो सीमंत द्वीप में है। तो उन्होंने फटाफटे कपड़ा सब परिधान किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको भी कृपा करने के जो महाप्रकाश लीला किए बोले कि उनको बुलाओ यहाँ। तो भक्त लोग लेके बुला लिए वहां। तो उनको बोले कि तुम कुछ चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने बोले हमको कुछ भी नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनी से भवतात भक्ति। उस समय पता नहीं श्लोक उच्चारण किए कि नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको ये सिखाए। तो श्रीधर कला बचा क्या बतलाए ना, हमारे साथ ये बामन पोकर में विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु हर दिन हमारे साथ एक केला थोड़ मचा घंटा घंट के लिए हमारे साथ हर दिन लड़ाई झगड़ा चलते रहे। ये जो लीला होता है ये लीला ही हमारे साथ चले और हमको कोई धन दौलत नहीं चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास लिए तो ये श्रीधर एक लौकी लेके दिए थे और लौकी से बहुत सुंदर भाव में और स्वीट राइस खीर बना के सती माता उनको दिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये भक्त का माध्यम से हमको बहुत सारे लीला प्रदर्शन किया करते हैं। अभी 9-10 हो गया, मुदा प्रभु है इधर। तो उनको खबर किया दिया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु और भी आप देखे हैं कि नवद्वीप लीला में चांद कांजी नाम से एक मुसलमान बा राजा थे। तो उन्होंने जो भक्त लोग कीर्तन किया करते थे श्रीवास संगन में जो कि रासस्थली है, अभिन्न रासस्थली है। तो वहां पर अपना दौरान लोग को लेके बहुत उत्पात किया करते थे। इतना ही नहीं और मृदंग भी तोड़ दिए। जो मृदंग तोड़ दिया गया और संकीर्तन में बाधा आने लगा तो चैतन्य महाप्रभु सभी नवदीप वासियों को इकट्ठा किए एवं खोल किरताल मृदंग लेके एवं मशाल लेके, आजकल जैसे लाइट का व्यवस्था उस समय नहीं थी, उसमें एक लकड़ी में कपड़ा लपटा दिया जाता था, तेल डाला करते थे वहां पर एवं आग लगा के फिर जाया करते थे। तब तो जब बामन पुकुर अभी भी वो चंद्रका जी का समाधि है, चैतन्य महाप्रभु हजार हजार भक्त लेके जब वहां पर गए तो वो पैर चांदका जी छो गए, क्योंकि आज उनको जरूर दंड मिलेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये संकीर्तन माध्यम से उनका जो असुर स्वभाव को नष्ट किए एवं चांदका जी छुपे हुए था तब उनको फिर बुला लिए। तो उनमें शास्त्र युक्ति भी हुआ एवं शास्त्र युक्ति का माध्यम से उनको परास्त किए, क्योंकि गाय को तो आप माता मानते हैं। तो आप आपका परंपरा में आपका शास्त्र में कौन से शास्त्र में है कि वर्णन है कि उन माता को हत्या करने के लिए। तो उन्हें आप अपना पराजय स्वीकार किए एवं उनका जो नयन से आंसू भी झरने लगा, क्योंकि जिस दिन मृदंग तोड़ दिया था गया था उसी दिन रात में नरसिंहदेव भगवान आए और उनका छत में बैठ गए थे, एक बुक में बैठ गए थे उनका। जैसे हिरण्यकशिपु को बुक भी धारण किए, बाबक्ष भी धारण किए, तो उनका जो भयंकर रूप उनका मन में अभी भी समाया हुआ था, इसे डर के मारे वो छुपे हुए थे। तो उन्होंने पहले सपना का जो बात बतला दी एवं चैतन्य महाप्रभु का नाम तो नमो महावदान तो उनको भी उन्होंने माफी कर दी। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारा लीला है, क्योंकि हमको पढ़ने के भी समय तो मिला नहीं कि हमको शाम को बतलाए थे, तो जो भी मैं सुना था आप लोग को संक्षेप में श्रवण कराया, क्योंकि भाषा ज्ञान है ही नहीं, इसलिए आप लोग को क्षमा करना। चैतन्य महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे, गौरांग गौरांग गौरांग। क्योंकि शास्त्र में ये वर्णन है कि गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने भवे नीर। किसका तो आ गया होगा नयन में नीर, हमारा तो नहीं हो रहा। आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि कभी भी आ जाए। मधुआ प्रभु की, तो आपको मधुआ प्रभु फिर कोई कारण बताएंगे, लीला श्रवण कराएंगे।